వందే సచ్చిదానందం వందే సచ్చిదానందం వందే భోగిలాంఛిత యోగివాంఛిత చరణ పదం వందే.
40 दिन प्रार्थना करने के बाद एक शैतान उनकी, जो ईसा पर कड़ी नजर रखे हुए था, परीक्षा लेने पहुंचा।
ओ, पिता ईश्वर से बातें करने में ऐसा मशगूल था कि मुझे तो कुछ सुध ही न रही। अब तो जोरों से भूख प्यास लगी है, मगर यहां तो दूर दूर तक पानी का कहीं नामो निशान नहीं। वैसे भी इस रेगिस्तान में खाने को क्या मिलेगा?
ये रेगिस्तान जरूर है इशपुत्र, पर यहां खाने को बहुत कुछ है।
कौन हो तुम, क्या चाहते हो?
मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, अर्थात तुम्हारा भला चाहने वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। भूख भी मिट जाएगी और प्यास भी। बोलो, तैयार हो मेरी बात मानने को?
वो कैसे?
कई तुम कहते हो कि तुम ईश्वर के पुत्र हो, तो क्यों ना इस पत्थर से कहते हो कि ये रोटी बन जाए?
अपने को मेरा शुभचिंतक बतलाने वाला तू शैतान है, दूर हट मुझसे। मेरी परीक्षा लेना चाहता है।
अरे, आदेश देने में तुम्हारा जाता ही क्या है? और फिर रोटी के सिवा और कौन तुम्हारी भूख मिटा सकता है?
शैतान, याद रख, मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है।
पेट की ज्वाला ही तो हमेशा से मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शों को मात करती आई है, जबकि एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति भी रिश्वत लेने, भ्रष्टाचार या फिर अन्य बुरे धंधों में लिप्त हो जाता है। चूंकि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, क्या इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनके पास भी असीमित ताकत है? क्या वे भी ईश्वर के समान, जिन्होंने पूर्वजों की भूख प्यास मिटाने के लिए मन्ना भेजा था? क्या ईसा स्वयं इस शक्ति का उपयोग अपनी भूख मिटाने को नहीं कर सकते थे? मगर ईसा ने स्वयं को उन लोगों में देखा जो भूखे हैं, घर से दूर हैं, जिनके पास भूख प्यास मिटाने को कुछ नहीं। ईसा ने भूख का एहसास किया ताकि भूखों को ईश्वरीय वचन का भोजन दे सके। यहाँ शैतान अपने मोर्चे पर डटा हुआ था।
अच्छा, चलो मैं तुम्हें इस संसार की सैर करा कर लाता हूँ। चलो, ये देखो कितना सुंदर है ये संसार, कितनी समृद्धि है। और ये जगह, ये देखो, यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। इन्हें पता है कि कब्जा कैसे किया जाता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और ये देखो, यहाँ तो मजे ही मजे हैं, सब अपने ही अपने में मस्त। क्या शान है, देखो शराब की तो नदियां बहती है, नदियां। और आगे चलो। हाँ, यहाँ ये देखो, कितनी होशियारी से ये लोग उस धनी के घर का सामान चुरा रहे हैं, है ना बुद्धिमान लोग। अरे ऐसे बुद्धिमान समझदार लूटपाट में माहिर लोग कहीं खोजने से भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ देखो क्या बढ़िया न्याय हो रहा है। अरे झूठ बोलकर और हेरा फेरी करके आसानी से किसी भी मुकदमे से बचा जा सकता है। अब बताओ कैसी लगी ये सैर?
ये सब अन्याय है, पाप है पाप।
पाप या पुण्य ये सोचना आपका काम नहीं है। मेरी एक बात मानो, ये सब मुझे दिया गया है। यदि तुम मेरे सामने झुककर मेरी आराधना करोगे तो मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा।
क्या? दूर हट जा शैतान। प्रभु अपने ईश्वर को छोड़ मैं किसी और की सेवा नहीं करूंगा।
याद रखो मेरे ही पास है जिंदगी का असली मजा, वैभव विलास और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन।
मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जो किसी गरीब का घर लूट कर मिले, ऐसा वैभव जिसने किसी मेहनतकश का खून चूसा है, और ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य किस काम का जो झूठ की नींव पर टिका हो। दूर हट जा शैतान, दूर हट जा।
जिंदगी वास्तव में चुनौतियों का नाम है जिसका मानव को हर पल सामना करना पड़ता है। कई बार ये जिंदगी किसी खूबसूरत छल के रूप में मानव के सामने आ खड़ी होती है, जिसमें पैसा ताकत और इज्जत के सामने मनुष्य डगमगा जाता है। कई मनुष्य परीक्षा की इस घड़ी में विजय पा लेते हैं तो कई इनमें फंसकर अपना सर्वनाश कर लेते हैं। ईसा चाहते तो शैतान की कही बात मानकर पत्थर को रोटी में बदल सकते थे, बगैर मनुष्य के भीतरी जागरण व चेतना के वे हर एक की आर्थिक समस्या सुलझा सकते थे। यहाँ दुनिया की चीजें सुख साधन दिखाकर शैतान ने ईसा को लालच दी, मगर ईसा पाप और दुष्कर्म का राज्य नहीं वरन प्रेम दया व शांति का राज्य फैलाने व स्थापित करने आए थे, जिनसे शैतान का कोई संबंध नहीं था। शैतान अभी खामोश नहीं हुआ है, वो अभी भी ईसा के पास ही है।
ये देखो ये है यरूशलेम के मंदिर का शिखर। यदि तुम अपने को ईश्वर का पुत्र समझते हो तो इस मंदिर के शिखर से नीचे कूद कर बताओ। सोच क्या रहे हो, कूद कर बताओ ना, डर गए? आप तो ईश्वर के पुत्र है ना। ईश्वर के पुत्र, ईश्वर।
हाँ हाँ हाँ, मैं ईश्वर हूँ, तुम्हारा पुत्र नहीं जो तुम्हारी आज्ञा मानूं। मेरे पिता महान हैं, यदि मैं इस मंदिर से नीचे भी कूदूं तो मेरे पिता अपने दूतों को आदेश देंगे कि वे मेरी रक्षा करें और अपने हाथों पर संभालें कि कहीं मुझे चोट न लग जाए। शैतान अब तुम यहां से चले जाओ, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा न लो।
कौन शासन करेगा? क्या ईसा और शासकों के समान किसी मानवीय साम्राज्य की स्थापना करने आए थे जो भोजन प्रसिद्धि और ताकत के बल पर खड़े थे, या फिर वे ईश्वर के शासन का उद्घाटन करेंगे, एक अनंतकालीन राज्य के एक नई सृष्टि की शुरुआत करेंगे? क्योंकि मानव युगों युगों से ईश्वर की बराबरी करने को प्रयत्नशील रहा है, अपने ही तरीकों से अपने साम्राज्य का निर्माण करना, दूसरों पर अधिकार, दबाव दमन, शक्ति का विस्तार करने की अमिट इच्छा,